धवला पुस्तक 12 लेक्चर नंबर 1 ओम नमः सितेभ्य ओम नमः सितेभ्य ओम नमः सितेभ्य ओम शुद्धात्मने नमः नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहूणं कम्मठजनियवेण वहि समुत्तिन्नये जिने नमिं वेयण महाहियारं विविहियारं परुवेमो। आचार्य श्री वीरसेन स्वामी रचित यह धवला नामक टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य। इसमें जो चौथा वेदना नामक खंड है उसमें अभी का जो विषय है 12वीं पुस्तक का शुरुआत में वेयणा भाव विहानानु योग द्वारम, यानी वेदना भाव विधान अनुयोग द्वार, यहाँ से अपनी बात यहाँ शुरू हो जाती है। देखो ये वेदना खंड कब से चल रहा है हमारा, सातवें पुस्तक के नहीं, सातवें को वेदना नहीं कहा था, बंद विचय स्वामित्व कुछ ऐसा, बंद विचय स्वामित्व था, और फिर आठवें में कुछ नहीं, सातवां खुद्दा बंद था, सातवां खुद्दा बंद था, आठवां बंद विचय स्वामित्व था, और नौवे से वेदना अनुयोग द्वार चल रहा था, तो उसमें कृति अनुयोग द्वार देखा था हमने नौवे में, ये परिशातन संघातन कृति जो शरीर के परमाणु लेता है वगैरह उसकी बात देखी थी। उसके बाद ये वेदना संबंधी जो है, यानी वेदना नाम विधान, वेदना निक्षेप विधान और वेदना नय विभाषण विभाषणता और द्रव्य विधान, द्रव्य विधान यानी संख्या, कर्म प्रकृतियों की संख्या, उसको द्रव्य कहा था, जिसको हम प्रदेश बंद सत्ता कहते हैं। ये जो चार अनुयोग द्वार है वो 10वीं पुस्तक में हुए थे। अभी जो हमारी 11वीं पुस्तक हुई उसमें शुरुआत में वेदना क्षेत्र विधान था और फिर काल विधान और उसकी बाद में उसकी चूलिकाए थी। अब यही वेदना का ही खंड अभी चल रहा है, तो यहां से जो देखो प्रस्तावना निकालिए जरा, जहाँ विषय परिचय लिखा है अनुक्रमणिका, जो छोटी अनुक्रमणिका, उसके बाद शुरुआत से तीन चार पेज के बाद यहाँ विषय परिचय लिखा है। देखो यानी विषय सूची के पहले जो सारा विषय परिचय दिया है उन्होंने, वहां हमको पढ़ना है उसका पहला पेज। तो वेदना अनुयोग द्वार के मुख्य अधिकार 16 है, तो 16 में से हमारे 6 हुए हैं, वेदना नाम, वेदना निक्षेप, वेदना नय विभाषणता और फिर द्रव्य विधान, ये चार हो गए। फिर क्षेत्र और काल, ये 6 हो गए। अभी सातवां यहाँ होगा। देखो वेदना अनुयोग द्वार के मुख्य अधिकार 16 है, उनमें से जिन अंतिम 10 अधिकारों को इस पुस्तक में प्ररूपणा की है उनके नाम ये है। अधिकारों की चाहिए, को नहीं, अधिकारों की इस पुस्तक में प्ररूपणा की है। यानी उनका ये भी इस पुस्तक में ये सारे 6 हो गए ना, तो बाकी 10 अनुयोग द्वार इस पुस्तक में आने वाले हैं, तो उनके नाम यहाँ बता रहे हैं। यानी अभी जो ये अभी हम पढ़ेंगे वो सातवें नंबर का है, वेदना भाव विधान, वेदना प्रत्यय विधान, वेदना स्वामित्व विधान, वेदना वेदना विधान, वेदना गति विधान, वेदना अनंतर विधान, वेदना सन्निकर्ष विधान, वेदना परिमाण विधान, वेदना भागाभाग विधान और वेदना अल्पबहुत्व विधान। वेदना का अर्थ ये कर्म प्रकृति को यहाँ वेदना कहा है। अब यहाँ वेदना भाव विधान की बात हो जाएगी, उसी को इन्होंने शॉर्ट में यहाँ लिखा है, परंतु हम मूल पुस्तक में से पढ़ेंगे क्योंकि वही बात वहाँ आने वाली है। अभी हम आते हैं नंबर एक पेज पर अपने। ये नंबर सात वाला जो वेदना में से जो अधिकार है अलग अलग, उसमें से सातवें नंबर का है वेदना भाव विधान अनुयोग द्वार। अभी इस यहाँ से हम पहले सूत्र वहां से स्टार्ट करेंगे, सूत्र नंबर एक को पढ़ेंगे। वेदना भाव विहाणे ती तथ्य इमाणी तिन्नी अनुयोग दाराणी नादववाणी भवंती। अब वेदना भाव विधान प्रारंभ होता है, उसमें ये तीन अनुयोग द्वार ज्ञातव्य हैं। कौन से है वो बात दूसरे पुस्तक में दूसरे सूत्र में बताएंगे, परंतु ये सूत्र संबंधी यहाँ कुछ टिप्पणी करेंगे। तो वेदना भाव बताए ना, कोई भी विषय हम शुरुआत करते हैं तो उसमें निक्षेप लगाते हैं, नाम स्थापना द्रव्य भाव, उसकी बात यहाँ भी करेंगे। भाव चार प्रकार का है, नाम भाव, स्थापना भाव, द्रव्य भाव, वो ब दिखता है वो करो, और भाव भाव। जैसे कोई पर विषय पर हम नाम स्थापना द्रव्य और भाव ये निक्षेप लगाते हैं, अब ये भाव शब्द पर ही हमको लगाना है, तो नाम भाव, स्थापना भाव, द्रव्य भाव और भाव भाव, उनमें भाव यह शब्द नाम भाव है, क्योंकि नाम हमने भी किसी का भाव ये नाम रख दिया हमने, सद्भाव या असद्भाव स्वरूप से। इसका दूसरा नाम मालूम है प्रेरणा बेन, सद्भाव स्थापना है, असद्भाव स्थापना, तदाकार और अतदाकार। तो सद्भाव या असद्भाव स्वरूप से वह यह है, इस प्रकार अभेद से संकल्पित पदार्थ स्थापना भाव कहा जाता है। क्या कहना चाहते हैं, किसी अन्य वस्तु में किसी अन्य वस्तु का वो यह है ऐसा हम संकल्प करते हैं अभेद से। जैसे हम भगवान महावीर की जो मूर्ति बनाई हमने, तो ये भगवान महावीर है, वो मूर्ति ऐसा नहीं कहते, वे भगवान महावीर है ऐसे हमने उसमें स्थापना की, संकल्प किया हमने। आज महावीर जयंती है ना, हाँ हाँ, जन्म कल्याण हुआ था उनका। देखो द्रव्य भाव दो प्रकार का है, नाम और स्थापना समझने में आसान है। अब द्रव्य भाव यानी द्रव्य निक्षेप से आपको याद है उसके कौन से भेद, आगम और नो आगम। आगम में जानने वाला जीव उसमें उसका उपयोग नहीं है, नो आगम में वो जीव का शरीर गायक शरीर, वो जीव जो भविष्य में जाने का अभी नहीं जान रहा है, और तद व्यतिरिक्त अभी हम यहाँ से पढ़ेंगे। देखो द्रव्य भाव दो प्रकार का है, आगम द्रव्य भाव और नो आगम द्रव्य भाव। यानी द्रव्य निक्षेप से, द्रव्य निक्षेप किसको कहना, देखो कि अन्य पर्याय का, भूत या भविष्यकालीन पर्याय का वर्तमान में उपचार करना, यहाँ तो जानने वाले जीव को ही भाव संबंधी जो प्रावृत है आगम है उसको जानने वाले जीव को ही भाव कह देंगे, ये द्रव्य भाव है। ये निक्षेप की बात चल रही है, यहाँ वेदना भाव अनुयोग द्वार अपना प्रारंभ हुआ है, उसमें हमेशा शुरुआत में किसी भी विषय में निक्षेप लगाते हैं। चार निक्षेप है ना, नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप और भाव निक्षेप। अब भाव शब्द पर हमको चार निक्षेप लगाना है, नाम भाव यानी किसी का नाम रख देना भाव, ये भाव नाम भाव हुआ। स्थापना भाव, किसी एक पदार्थ में हमने अन्य का उपचार कर दिया, संकल्पना की, समझे ना, हमने यहाँ चार चीजें रखी, हम कहेंगे ये कौन सा है, औदयिक भाव है, एक सार्वभौमिक भाव है, ऐसा ये तो ये भाव हो गया हमारा, हमने स्थापना की, वो भाव स्थापना भाव हुआ। अब क्या तीसरा कौन सा है, द्रव्य भाव यानी द्रव्य निक्षेप से उसको भाव कहना, तो उसमें दो भेद है, आगम द्रव्य भाव और नो आगम द्रव्य भाव। आगम यानी भाव संबंधी जो प्रावृत है उसका जानकार, उसमें उपयोग नहीं है। अब इसमें से पढ़ेंगे हम, देखो दो नंबर के पृष्ठ पर आना, उसमें से वो आगम द्रव्य भाव किसको कहेंगे, तो उनमें भाव प्रावृत, प्रावृत यानी जो जिनागम है उसमें भाव संबंधी जो कुछ प्रावृत आता है, उसका जो अधिकार है, उसका जानकार ऐसा जो जीव है, परंतु कैसा है? उपयोग रहित जीव। तो मेरा प्रश्न है, कोई जीव उपयोग रहित हो सकता है? मनीषा बेन, यहाँ तो लिखा है उपयोग रहित जीव। सिद्ध, देखो देखो, सिद्ध भगवान को उपयोग रहित कहेंगे तो जड़ हो जाएंगे? जड़ हो गए क्या सिद्ध? ख्याल में आती है ना, उपयोग रहित का अर्थ है अभी वो उसने ये सब आगम पढ़ा है, परंतु उसका उपयोग अभी आगम में नहीं है, अन्यत्र उनका उपयोग है। आगम में उपयोग रहित, अरे उपयोग रहित, उपयोग तो जीव का लक्षण है, तो कोई भी जीव कभी अपने लक्षण से रहित नहीं होगा।
अभी आपकी बेटी बाहर गांव गई है, लेकिन आपका उपयोग इसमें है, शास्त्र में, तो कहेंगे कि आप आपके बेटी के उपयोग रहित हो। समझ में है? वैसे यहाँ कह रहे हैं कि जो जानकार है, शास्त्र का जानकार है, लेकिन उसमें उपयोग नहीं लगे, रसोई बना रहे।
समझ में आई ना? भाव प्रावृत का जानकार, उपयोग रहित जीव, यानी उसका उस प्रावृत में उपयोग नहीं है, अन्य किसी में है। आगम द्रव्य भाव कहलाता है, इसको आगम द्रव्य निक्षेप कहते हैं, यानी आगम द्रव्य निक्षेप से उस जीव को ही भाव कहेंगे। नो आगम द्रव्य भाव, नो आगम यानी नहीं जानने वाला जीव है, अभी नहीं जानने वाला जीव नहीं कहना, नहीं जानने वाला है। कौन नहीं जान रहा है? उसका शरीर नहीं जान रहा है, तो शरीर को भी हम कहेंगे नो आगम द्रव्य निक्षेप से उसको भाव कहेंगे, उस शरीर को, यानी उस जीव के शरीर को। वो कौन सा शरीर हो सकता है? वर्तमान का हो सकता है, भूतकाल का हो सकता है, भविष्यकाल का हो सकता है। तो यही बात यहाँ कह रहे, देखो, नो आगम द्रव्य भाव ज्ञायक शरीर, यानी ज्ञायक का शरीर, शरीर ज्ञायक नहीं होता है। ये समास अन्य अन्य प्रकार से होते हैं ना। भावी यानी यहाँ जीव लिया जो भविष्य में जानकार होगा, और तद व्यतिरिक्त ना जीव है ना उसका शरीर है, इनके अलावा अन्य जो कुछ है, कर्म हो सकते हैं, नो कर्म हो सकते हैं, अन्य चीजें हो सकती है। नो आगम द्रव्य भाव के भेद से तीन प्रकार का है। नो आगम के कौन से तीन भेद हुए? ब्रह्मा, हाँ, ज्ञायक शरीर, भावी और तद व्यतिरिक्त, ये तीन भेद हुए। अब तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य भाव दो प्रकार का है, कर्म द्रव्य भाव और नो कर्म द्रव्य भाव। तद व्यतिरिक्त ने उनको छोड़कर दूसरे, किसको छोड़ा? जीव को भी छोड़ा, उसका शरीर भी छोड़ा, तो इनको शरीर को छोड़कर अभी क्या बचा? कर्म और नो कर्म यानी अन्य चीजें। उनमें ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्मों की जो अज्ञानादिकों उत्पन्न करने रूप शक्ति है, अन्नादि समुपायन शक्ति, अज्ञानादि को बराबर है, यानी वो जो ज्ञानावरणादि कर्म अज्ञानादि को उत्पन्न करते हैं, बराबर, ज्ञानावरणादि कर्मों जो कर्मों की जो अज्ञानादि को उत्पन्न करने रूप शक्ति है, यानी अज्ञानादि को उत्पन्न करने रूप शक्ति है, वह कर्म द्रव्य भाव कही जाती है, यानी कर्मों का भाव। कर्म की बात है ना, कर्म में जो जीव में जो कुछ वो दो निमित्त बनने की जो शक्ति है वो है कर्म द्रव्य भाव, यानी उस कर्म को ही हमने भाव कहा, कर्म को भाव कह दिया, क्योंकि देखो भाव तो जीव में है, परंतु उनमें जीव में वैसा अज्ञान आदि उत्पन्न करने की कर्मों में शक्ति है, इसलिए उसको द्रव्य निक्षेप से कर्म को ही भाव कह दिया है। नो कर्म द्रव्य भाव दो प्रकार का है, जो कर्म नहीं है वो अभी यहाँ नो कर्म में लेना, सचित्त द्रव्य भाव और अचित्त द्रव्य भाव। उनमें केवल ज्ञान व केवल दर्शन आदि सचित्त द्रव्य भाव है, और अचित्त द्रव्य भाव दो प्रकार का है, मूर्त द्रव्य भाव और अमूर्त द्रव्य भाव। मूर्त द्रव्य भाव किस में हो गए? पुद्गल में हो गए, है ना, और अमूर्त अन्य द्रव्यों में हो गए। तो कहते उनमें वर्ण गंध रस स्पर्श आदि मूर्त द्रव्य भाव है, यानी मूर्त द्रव्य के जो भाव है, और अवगाहनादिक अमूर्त द्रव्य भाव है। अवगाहनादिक में क्या कह लेंगे? अवगाहना हेतुत्व, गति हेतुत्व, स्थिति हेतुत्व, परिणाम हेतु, सब ले लेंगे उसमें, क्योंकि जीव के भावों को यहाँ नहीं लेना, वो तो हमने अलग से ले लिए। अब ये तो सारे द्रव्य निक्षेप के भेद हुए, जिसको हमने द्रव्य भाव कहा था। कौन कौन से हुए? आगम द्रव्य भाव, नो आगम द्रव्य भाव। आगम में वो जानकार जीव, उसमें उपयोग नहीं है, ऐसा लिया। नो आगम में नहीं जानने वाला क्या क्या है? ज्ञायक शरीर, भावी यानी वो जीव जो भविष्य में जानने वाला है, और इनके इनको छोड़कर इसको कहेंगे तद व्यतिरिक्त। तद व्यतिरिक्त के दो भेद, कर्म द्रव्य भाव और नो कर्म द्रव्य भाव। कर्म द्रव्य भाव में ज्ञानावरणादिकों की जो अज्ञान वगैरह उत्पन्न करने की शक्ति है, उसको कर्म द्रव्य भाव कहा। और नो कर्म द्रव्य भाव में दो बातें ली, सचित्त और अचित्त। सचित्त में केवल ज्ञान, केवल दर्शन वगैरह ले लिया, और अचित्त ने अचित्त में दो लिए, मूर्त द्रव्य भाव और अमूर्त द्रव्य भाव। मूर्त में स्पर्श रस गंध वर्ण लिए, और अमूर्त में अवगाहनादि लिए। यहाँ तक हमने द्रव्य निक्षेप के भेद देखे, अब भाव निक्षेप के भेद करेंगे। भाव भाव, भावाभाव नहीं, भावाभाव करेंगे तो भाव अभाव शब्द हो जाएगा, वो नहीं है। भाव भाव, वा के बदले व करना, भाव भाव, यानी भाव निक्षेप से भाव। पहले द्रव्य निक्षेप से भाव किया था, है ना,
लास्ट टाइम किया था,
लास्ट टाइम किया था। देखो भाव भाव दो प्रकार का है, आगम भाव भाव, जिसे हमने नो आगम द्रव्य भाव की बात की थी। आगम द्रव्य भाव में क्या देखा था?
उपयोग रहित
द्रव्य में, द्रव्य निक्षेप में वो जानकार परंतु उपयोग रहित। यहाँ जानकार देखो, हाँ, आगम भाव भाव और नो आगम भाव भाव, इनमें भाव प्रावृत का जानकार उपयोग युक्त जीव, यानी वो जानने वाला भी है और उसी में उपयोग भी है, आगम भाव भाव कहा जाता है। यानी आगम भाव निक्षेप से उस जीव को ही भाव कहेंगे। नो आगम भाव भाव दो प्रकार का है, तीव्र मंद भाव और निर्जरा भाव। शंका, जबकि तीव्रता व मंदता भाव स्वरूप है, तब उन्हें भाव भाव नाम से कहना कैसे उचित कहा जा सकता है? तो उसको भाव निक्षेप से भाव क्यों कह रहे हो? समाधान, नहीं, क्योंकि तीव्र तीव्रतर तीव्रतम, तीन बात बताएं, तीव्र अधिक तीव्र और सर्वाधिक तीव्र, गुड बेटर बेस्ट जैसा, फिर मंद मंदतर और मंदतम, इसको तरतमता कहते हैं, है ना, आदि गुणों के द्वारा भाव का भी भाव पाया जाता है। क्या कहना चाहते हैं? किसी वस्तु में क्या भाव है ये तो समझा सकते हैं, नहीं समझे? जैसे ज्ञानावरण शक्ति में, ज्ञानावरण कर्म में कौन सा भाव है? तो कहते ज्ञान को आच्छादन करने का भाव है। जीव में ज्ञान में क्या भाव है? जानने रूप जो शक्ति है वो उसका भाव है। अभी कहते भाव में क्या भाव होगा, भाव का भाव क्या हो सकता है? कहते तीव्रता मंदता यही भाव का भाव है, समझ में उनकी भाषा। फिर देखते देखो क्या कहा, प्रश्न भी ऐसा ही पूछा है, तो इसको भाव भाव क्यों कह रहे हैं? देखो निर्जर, यहाँ हम पढ़ते आगे, निर्जरा को भी भाव भाव रूपता सिद्ध नहीं है। दो प्रकार बताए ना, भाव भाव, आगम भाव भाव, नौगम भाव में दो, तीव्र मंदता और निर्जरा भाव। तो कहते निर्जरा को भी भाव भाव रूपता सिद्ध नहीं है, असिद्ध नहीं है, वो प्रसिद्ध है। हाँ, क्योंकि सम्यक्त्व उत्पत्ति यानी सम्यक्त्वोत्पत्ति आदिक भाव भावों से उत्पन्न होने वाली निर्जरा के उपचार से भाव भाव करना, फिर भावा भाव नहीं, भाव भाव, स्वरूप में होने में कोई विरोध नहीं आता। क्या कहते हैं, निर्जरा हुई है, क्या हुआ, कार्य हुआ, उसका कारण क्या है, तो कहते सम्यक तो उत्पत्ति आदि भाव, भाव भाव कहा ना, भाव है ना, वर्तमान में वो भाव है, तो उससे निर्जरा हो रही है। तो जो कार्य हुआ है उसमें कारण का उपचार करके वो निर्जरा को भी भाव भाव, भाव निक्षेप से उसको भी भाव कहेंगे, कारण का कार्य में उपचार किया। यहां अभी इतने सारे आपने बता दिए, क्या क्या बता दिए, नाम स्थापना द्रव्य भाव, द्रव्य के भी इतने भेद और भाव के भी इतने भेद। अभी उसमें से ये जो वेदना भाव विधान है उसमें कौन सा वाला लेना, भाव, ये पूछ रहे अभी। तो कहते यहाँ कर्म भाव प्रकृत है, तो आप ये सब ढूंढ के मुझे बताओ कर्म भाव शब्द कहाँ आया था, प्रेरणा भी
कर्म द्रव्य प्रभाव।
हाँ हाँ, हाँ, नो आगम द्रव्य भाव में, इन्हें तद व्यतिरिक्त नो आगम थे, तद व्यतिरिक्त में कर्म और नो कर्म थे, उसमें वो कर्म द्रव्य भाव जो है। तो कहते यहाँ कर्म भाव प्रकृत है, प्रावृत यानी जो हमने प्रावृत प्रावृतक अनुयोग वगैरह जो भेद हमने देखे थे श्रुत ज्ञान के, यानी आगम इतना ही समझना, यानी भाव संबंधी आगम, उसको प्रावृत कहेंगे। हाँ,
समय सार प्रावृत कहते हैं, वहाँ भेटनु ऐसा
भेटनु प्रावृत पाहुड़ जो कहते हैं अष्ट पाहुड़
प्रावृत
मोक्ष पाहुड़, यानी वो अधिकार है उस संबंधी उस विषय का, वो आगम है।
यानी यहाँ प्रावृत का अर्थ क्या लेना,
प्रावृत यानी आगम, आगम
आगम,
भेटनु यानी वो तो कहने के लिए हम भेटनु कह रहे हैं, परंतु समय प्रावृत यानी समय सार संबंधी, वो समय संबंधी वो आगम का जो वहाँ अधिकार है उसी को समय प्रावृत। जैसे अष्ट पाहुड़ में हमने आठ अलग अलग पाहुड़ देखे है, वो प्रावृत पाहुड़ यानी प्रावृत, और ये प्रावृत शब्द श्रुत ज्ञान के उसमें आए ही है, जो विशिष्ट अधिकार का नाम प्रावृत है। अब यहाँ कर्म भाव प्रकृत है, प्रकृत है नहीं, उसकी चर्चा करेंगे, क्योंकि कर्म भाव को छोड़कर और दूसरों की वेदना का यहाँ संबंध नहीं है, क्योंकि वेदना का ही भाव यहाँ चल रहा है, वेदना यानी कर्म प्रकृति, कर्मों के भाव की यहाँ चर्चा चलेगी। वेदना का भाव वेदना भाव, ये वेदना भाव अनुयोग द्वारा ना, वेदना भाव विधान ये अनुयोग द्वार का नाम है। तो वो शब्द कैसे तैयार हुआ, वेदना भाव ने वेदना का भाव, वेदना ने कर्म, कर्म का भाव, वो वेदना भाव, वेदना भाव का विधान अर्थात प्ररूपणा वेदना भाव विधान है। उस वेदना भाव विधान में ये तीन अनुयोग द्वार जानने योग्य, सूत्र क्या था, वेदना भाव विधान में ये तीन अनुयोग द्वार जानने योग्य है। तो उन्होंने भाव शब्द पर सारे निक्षेप लगाए, उसमें से कौन सा हमारा विषय है, तो कर्म द्रव्य भाव, यानी द्रव्य निक्षेप से कर्म का जो भाव है उसी को भाव कह दिया है। तो ये वेदना का भाव वो वेदना भाव प्ररूपणा अधिकार है, उसको हाँ वेदना भाव विधान अनुयोग द्वार का नाम बताया। उसमें अभी कौन से तीन अनुयोग द्वार वो बताएंगे, दूसरे सूत्र में बताने वाले हैं। शंका, यहाँ आठ अनुयोग द्वारों की प्ररूपना क्यों नहीं की गई है, नहीं, क्योंकि शेष पांच अनुयोग द्वार इन्हीं में प्रविष्ट है। ये कौन से आठ होने चाहिए थे? निक्षेप नहीं पूछ रहे,
भागा भाग तक लेके जाना है।
हाँ
हाँ हाँ, अल्प बहुत भागा भाग तक लेके जाना है।
प्ररूपना स्वामी पद में, हाँ हाँ बरोबर है। प्ररूप देखो देखो हम क्या कहते हैं, सत मैंने प्ररूपना, सत संख्या स्वामित्व, हाँ यानी वो निर्देश वो उसमें भी आता है ना, निर्देश स्वामित्व वगैरह वो सब आने चाहिए इसमें। हमेशा हम क्या देखते हैं, उसका जो प्ररूपना करते हैं, फिर उसकी संख्या बताते हैं, द्रव्य बताते हैं, क्षेत्र सम, फिर क्षेत्र स्पर्शन, काल भाव, अंतर भाव और अल्पभूत, इस तरह से उसके आठ अनुयोग द्वार हम देखते हैं। तो कहते हैं उसमें से यहाँ अभी तीन ही क्यों बता रहे हो, ये उनका प्रश्न है। हमेशा क्या बताए, पहले उनका है ऐसा कहेंगे, है तो उनकी संख्या बताएंगे, वो कहाँ किसके होते वो बताए, वो वगैरह वगैरह बातें बताएंगे। तो कहते हैं इसमें ये पांच अनुयोग द्वार इसी में गर्भित है, इन्हीं में प्रविष्ट है। शंका, अभी वेदना भाव विधान का अवतार किस लिए हुआ है? तो कहते हैं समाधान, वेदना द्रव्य विधान में जघन्य व उत्कृष्ट आदि के भेद से जिन आठ कर्मों के द्रव्य प्रमाण को जान लिया है, हमने जाना था ना, क्या कहा था उसको, हाँ उसका नाम क्या था बोलो, अधिकार का नाम नहीं पूछ रहे, यहाँ क्या लिखे है, द्रव्य वेदना द्रव्य विधान यानी कर्मों की जो परमाणु की संख्या, जघन्य व उत्कृष्ट आदि के भेद से, हाँ
नहीं, 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 नहीं,
जघन्य जघन्य का भेद था, उत्कृष्ट भेद था, उसके द्रव्य प्रमाण को जान लिया, उसको नाम क्या था, उस जीव को हम क्या कहते थे, क्षपित कर्मांशिक और गुणित कर्मांशिक, ये कितनी बातें हमने उसमें देखी थी ना, उसके सारे कंडीशंस, छह आवास वगैरह की बात देखी थी। तो ये दसवीं पुस्तक में हमने बहुत विस्तार से उसको देखा था। फिर क्षेत्र विधान में, ये अभी ग्यारहवीं पुस्तक में, क्षेत्र ने कितने क्षेत्र में है, तो उसमें वो सारी बातें, वो अवगाहना की कैसे कैलकुलेट करना, वो सब देखी थी। क्षेत्र विधान में भी यानी उसमें समुद्घात की अपेक्षा और एक एक प्रदेश की अपेक्षा रिफरेंसेस हमने देखे थे। जघन्य व उत्कृष्ट आदि के भेदों से जिनका अवगाहना प्रमाण जाना जा चुका है, किसका, ज्ञानावरणादि प्रकृतियों का, तथा काल विधान में जिनका जघन्य व उत्कृष्ट आदि के भेदों से काल प्रमाण ज्ञात हो चुका है, उसमें हमने वो स्थिति के भेद वगैरह उसकी चर्चा की थी। उन आठ कर्मों की अभी आगे बात, अज्ञानादि कार्यों की उत्पादक शक्ति के विकल्प, विकल्प ने उसके भेद, यानी जो ज्ञानावरणादिकों का जो अपना अपना जो अलग अलग कार्य है, तो ज्ञानावरण का नाम पहले लिया इसलिए अज्ञान का नाम पहले लिया, क्योंकि हरेक की अपनी अपनी शक्ति जुदी जुदी है। तो कहते आठ कर्मों की जो उनका जो अपना अपना कार्य है, अज्ञान आदि, इन कार्यों की उत्पादक शक्ति, क्योंकि कर्मों में भी अपनी कुछ शक्ति है ना, तभी तो उसका निमित्त बन रहा है, तो उनके उत्पादक शक्ति के विकल्पों की यानी उनके भेदों की प्ररूपणा करने के लिए वेदना भाव विधान का अवतार हुआ है। यानी वो सभी आठ कर्मों में क्या शक्ति है, उनके कितने कितने भेद है, उसकी यहाँ चर्चा चलेगी। अब उक्त तीन अनुयोग द्वारों का नाम निर्देश करने के लिए आगे का सूत्र कहा जाता है। तीन अनुयोग द्वार है इतना बताया, उनके नाम क्या है वो अब बता रहे हैं। दो नंबर का सूत्र, पदमीमांसा सामित्तम अप्पा बहुए, पदमीमांसा स्वामित्व और अल्प बहुत्व, अल्प हुआ अल्प बहुत्व। सूत्र में निर्दिष्ट, निर्दिष्ट ने कहे हुए पद से, यहाँ पद मीमांसा है तो पद शब्द का अर्थ क्या है, तो पद से जघन्य व उत्कृष्ट आदि पदों का ग्रहण किया है। पद से क्या समझना है, जघन्य और उत्कृष्ट आदि, क्योंकि अन्य पदों का यहाँ कोई प्रयोजन नहीं है। इसलिए यहाँ अर्थपद व व्यवस्था पद आदिक पदों का ग्रहण नहीं होता, किंतु भेद पद का ही ग्रहण किया जाता है। यानी वो जघन्य उत्कृष्ट आदि जो है ना, उसकी यहाँ चर्चा होगी। पदों की मीमांसा, पद मीमांसा शब्द कैसे तैयार हुआ? पदों की मीमांसा, जैसे हम कहते हैं कोई अर्थ, यह अर्थ पद है, इसके अनुसार ये समझ लेना, ऐसा हमेशा बात आती है। अर्थ पद यानी उसको जो कुछ नियम वगैरह बताते हैं, पद यानी शब्द, शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं, तो इसमें कौन से लिए पद शब्द आया है, पद मीमांसा का अर्थ क्या है? तो कि पद मीमांसा यानी वो तो जघन्य उत्कृष्ट आदि की बात यहाँ होगी। उसका जो भाव है वो जघन्य है, उत्कृष्ट है, जो कुछ उसमें चर्चा करेंगे। पदों की मीमांसा अर्थात परीक्षा या गवेषणा का नाम पद मीमांसा है, उसकी चर्चा, उस संबंधी बातें बताएंगे। यह प्रथम अधिकार है। अब स्वामित्व बता रहेंगे, ये पदों के स्वामी कौन है? घोड़ा व हाथी आदि संबंधी स्वामित्व के भेद से, यद्यपि स्वामित्व बहुत प्रकार का है, जब केवल स्वामित्व कहेंगे, किसका स्वामी, ये घर का स्वामी कौन है, ये गाड़ी का स्वामी कौन है, इसका मालिक कौन है, हम पूछते ना, तो स्वामित्व अनेक का हो सकता है। यहाँ किसकी बात है? यहाँ कर्म भाव के स्वामित्व का ही ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि और दूसरों का यहाँ अधिकार नहीं है। ये सब बातें कर्म की बात चल रही, इन कर्म भावों का कौन स्वामी है, मैंने किस जीव के ये कर्म भाव होंगे, यह दूसरा अनुयोग द्वार है। पहला अनुयोग द्वार कौन सा देखा है? पद मीमांसा। दूसरा जो है वो स्वामित्व है। अल्प बहुत्व भी यद्यपि द्रव्यादि के भेद से अनेक प्रकार का है। अल्प बहुत्व किस किस में लगता है? जैसे अभी हमने स्थितियों में लगाया, द्रव्य में लगाया, बहुत प्रकार का अल्प बहुत्व होता है। यहाँ तो कर्म भाव की बात है, तो उसी का अल्प बहुत्व भी बताएंगे। तो अनेक प्रकार का है, तो भी यहाँ कर्म भाव के अल्प बहुत्व का ही ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि दूसरे अल्प बहुत्वों का यहाँ प्रयोजन नहीं है। कर्मों का भाव हम भले वो एक एक कर्म का भाव हम अविभाग प्रतिच्छेदों में अपने जो कुछ वो बताने जा रहे हैं उसमें वो बताएंगे। यह तृतीय अनुयोग द्वार है। इस प्रकार इन तीन अनुयोग द्वारों के द्वारा भाव प्ररूपणा करते हैं। भाव से क्या मतलब है? कर्म का भाव। उसमें तीन अनुयोग द्वार कौन से देखे? पद मीमांसा,
स्वामित्व
और अल्पभूत्व। अभी अभी देखे ना हमने दूसरे सूत्र में, पद मीमांसा यानी वो जघन्य उत्कृष्ट आदि पदों के जो भेद है उस संबंधी चर्चा चलेगी। स्वामित्व में उसका कौन स्वामी है वो बताएंगे, और उसमें अल्पभूत्व बताएंगे। ये सब कर्म के भावों में ही लगाना है। अब तीसरा सूत्र, पद मीमांसाए या तो पद मीमांसा की अपेक्षा नानावर्णीय वेयणा भावदो किम उक्कस्सा किम अनुक्कस्सा किम जहन्ना किम अजहन्ना। जैसे पहले भी हमने वो द्रव्य में भी ऐसे प्रश्न पूछे थे ना, 13-13 कुछ प्रश्न पूछे थे, वैसे वहां पे पद की बात थी। वहां पर यहाँ द्रव्य में पदों की बात थी, अभी यहाँ भावों में लगाएंगे हम। पद मीमांसा में ज्ञानावरणीय वेदना भाव की अपेक्षा, यानी ज्ञानावरणीय कर्म, वेदना का अर्थ है कर्म। हाँ अभी पढ़ा ना ऊपर सूत्र, अभी पढ़ा ना। हाँ तो पद मीमांसा में ज्ञानावरणीय वेदना भाव की अपेक्षा क्या उत्कृष्ट है, क्या अनुत्कृष्ट है, क्या जघन्य है और क्या अजघन्य है, ये तो प्रश्न रूप पृच्छा की गई है। यह देशामूर्षक सूत्र है। यहाँ चार ही बातें उन्होंने पूछी, उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जघन्य, अजघन्य, तो उसमें बहुत सारे प्रश्न इसी में से निकलेंगे। भाव ने कर्मों का भाव, ज्ञानावरण का भाव क्या है? अज्ञान को उत्पन्न करने की शक्ति, वो उसका भाव है। ज्ञान में आवरण, हाँ कर्म में शक्ति है ना वहाँ पर, जीव में निमित्त बनता है तो कर्म में कुछ, ये तो ये क्यों आपको जो ज्ञानावरण जो है ऐसा कार्य ये पुद्गल क्यों नहीं कर रहा है, इसमें वो ज्ञान में कुछ आवरण करने की शक्ति है ही नहीं इसमें, ये प्लास्टिक में नहीं है, ज्ञानावरण कर्म में कुछ तो शक्ति है ना, तभी हमने तो उसको अलग अलग नाम भी दिए, ये ज्ञानावरण है, ये दर्शनावरण है, ये आयु कर्म है, उसमें कौन सी शक्ति है जीव को उस पर्याय में रखने की। इस तरह हर एक कर्म का अपना अपना जो भाव है वो क्या कार्य करता है उसमें जो शक्ति है उसकी भी बात यहाँ होगी, उसमें वो जघन्य उत्कृष्ट शक्ति की अपेक्षा भेद बताएंगे। देखो ये तीसरा सूत्र अभी हमने पढ़ा, उसमें ये पद मीमांसा हो रही है, तो इसमें तो उत्तर में तो यानी उत्तर यानी प्रश्न पूछा गया था कि ज्ञानावरण आदि की जो ज्ञानावरणीय की आदि नहीं लेना, ज्ञानावरणीय जो है वेदना वो भाव से उत्कृष्ट है कि अनुत्कृष्ट है, जघन्य है कि अजघन्य है, तो कहते ये सूत्र देशामर्शक है। देशामर्शक यानी फॉर एग्जाम्पल थोड़ा बताया है उसमें बहुत सारा जान लेना, थोड़ू लख्यू घणु जान जो एम, तो यह देशामर्शक सूत्र है, अतएव वह अन्य नौ पदों का सूचक है, यानी टोटल नौ चार 13 यहाँ प्रश्न उठ सकते इसमें से, जो हमने पहले भी 10वीं पुस्तक में विस्तार से देखे थे, आपको याद है चार सूत्र में बताए उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट जघन्य अजघन्य, अब सारे के सारे और नौ भी इसमें से निकाल के बताएंगे।
एक निश्चित हम लोग गुणित कर्मों से तो क्षपित कर्मों से देख के आए हैं, द्रव्य प्रमाण
में। हाँ, द्रव्य प्रमाण में हमने गुणित और क्षपित कर्मांशिक देखे,
और यहाँ पे जो भाव की अपेक्षा जो यहाँ पे उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट जो देख रहे हैं जघन्य, वो क्षपित कर्मांशिक में कम होगा और गुणित कर्मांशिक में ज्यादा होगा।
आपने अभी भाव पढ़ा कहाँ है?
नहीं, मैं खाली पूछ रहा हूँ,
पढ़ने के बाद पूछना, सारे बदलने वाले बताने वाले स्वामित्व ये सब बताएंगे, अभी तो विषय नहीं समझा, प्रश्न कहाँ से पूछेंगे आप, ख्याल में आती है ना बात, अभी तो भावों की चर्चा शुरू कर दी हमने और ये प्रश्न लिख के रखना, आप ही हमको बताएंगे उसका उत्तर। यहाँ तो द्रव्य की अपेक्षा यानी कहाँ परमाणु की संख्या कम है कहाँ ज्यादा है उसकी चर्चा हुई थी, अब यहाँ तो हम क्या देख रहे हैं उनका भाव है और वो जघन्य उत्कृष्ट आदि की पहले कौन से उसमें पद हो सकते है उसकी बात यहाँ बताएंगे। देखो यह देशामर्शक सूत्र है, अतएव वह अन्य नौ पदों का सूचक है, टोटल 13 पद इसमें से निकलते हैं, इसलिए सब पदों का योग 4 अधिक 9 13 होता है, योग यानी टोटल, वह इस प्रकार है। अब ये 13 प्रश्न यहाँ बताएंगे, उक्त ज्ञानावरणीय वेदना क्या उत्कृष्ट है, अब ऐसे प्रश्न हमें वो द्रव्य विधान में भी देखे थे क्या उत्कृष्ट है अनुत्कृष्ट है, और यहाँ पर भी वही प्रश्न है, पर यहाँ भाव की अपेक्षा लगाना है, यहाँ संख्या से कोई मतलब नहीं, उसका भाव उत्कृष्ट है कि नहीं है, ज्ञानावरण का भाव क्या है, अज्ञान को उत्पन्न करना, तो वो उत्कृष्ट है कि अनुत्कृष्ट है कि जघन्य है, वो यहाँ पूछ रहे हैं, है ना, तो कहते उक्त ज्ञानावरणीय वेदना क्या उत्कृष्ट है, आप इसको नंबरिंग करो, एक नंबर डालो, क्या अनुत्कृष्ट है, ये दो नंबर हुआ, क्या जघन्य है इसको तीन नंबर डालो, क्या अजघन्य है ये चार हुआ है, चार तो उन्होंने सूत्र में बताए थे, अब पांचवे नंबर पर क्या सादी है, छह नंबर पर क्या अनादि है, सात पर क्या ध्रुव है, आठ पर क्या अध्रुव है, कौन से आठ हुए, उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट जघन्य अजघन्य सादी अनादि ध्रुव और अध्रुव। अब कहते हैं क्या ओज है क्या युग्म है, 9 और 10, अब यहाँ भावों में भी उसके जो गिनने की भावों को गिनने का भी जो कुछ अविभाग प्रतिजी जो कुछ बताएंगे उसमें भी ये जो उसका जो विषम संख्या है के सम संख्या है ये बताएंगे कि ओज है या युग्म है, युग्म है वो सम संख्या होती है, ओज यानी विषम होती है, क्या ओम है क्या विशिष्ट है, हमने देखा है ना वो घटकर होता है क्या बढ़कर होता है उसको भी कहेंगे, और क्या नोम नो विशिष्ट है, यानी घटने बढ़ने की बात नहीं, उतने के उतने रहते हैं, उसको कहेंगे नोमनो विशिष्ट। हाँ, ये 13 प्रश्न उठ सकते हैं। कौन पहले चार तो मालूम है ना, उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट जघन्य अजघन्य, फिर सादि अनादि ध्रुव अध्रुव, उसके बाद ओज युग्म, ओम नोम और ओम नोम, यानी नोम नो विशिष्ट, ओम नहीं घटकर होता है, ओम और विशिष्ट है बढ़कर। हाँ, और फिर नोम नो विशिष्ट, दोनों ही नहीं घटकर, वो बताएंगे अभी उसका अर्थ। विशिष्ट है बढ़ वृद्धि, हानि होकर नहीं हुआ है यार, बढ़कर भी नहीं हुआ है, जो उतना का उतना रहा है। फिर इस सूत्र में एक एक पद का आश्रय करके 12 भंग स्वरूप अन्य 13 पृच्छा सूत्र गर्भित है। क्या करना, अभी एक एक को कायम रखो, कौन सा पहला उत्कृष्ट है, तो कहेंगे उत्कृष्ट ज्ञानावरणी की उत्कृष्ट, क्या उत्कृष्ट है, तो हाँ उत्कृष्ट उत्कृष्ट है, क्या वो अनुत्कृष्ट है, तो उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट नहीं हो सकती, क्या जघन्य है, नहीं उत्कृष्ट है वो जघन्य नहीं हो सकता, क्या अजघन्य है, तो हाँ उत्कृष्ट भी अजघन्य का ही भेद कहेंगे, क्योंकि जो जघन्य नहीं वो सारा ही अजघन्य है। इस तरह से उस पर चर्चा करनी, क्या सादि है क्या अनादि है क्या ध्रुव है क्या अध्रुव, ये सब बातें यहाँ एक एक में ये अन्य अन्य प्रश्न पूछना सब। तो कहते कि इस सूत्र में एक एक पद का आश्रय करके 12 भंग स्वरूप अन्य 13 पृच्छा सूत्र गर्भित है, यानी ये एक सूत्र हुआ 13 के प्रश्न पूछे, फिर उसको एक 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 को लेकर उस पर सारे प्रश्न पूछना, वे भी इसी सूत्र से सूचित है। इस कारण 14 पृच्छा सूत्र है ना, पहले पृच्छा सूत्र में 13 प्रश्न पूछे, अभी इस ये जो 13 में से एक एक को लेना और उस पर ये सारे भंग लगाना, यानी एक एक को अलग एक एक के साथ कॉम्बिनेशन कर करके पूछना, इस तरह से 13 और हो जाएगी, टोटल 14 हो जाते हैं। इस कारण 14 पृच्छा सूत्रों के सब भंगों को जोड़कर 169, यानी पहले 13 हुए और फिर ये 13 पर एक एक के साथ अन्य 12 को लगा के पूछे, तो इसे 169 समझना चाहिए। यहाँ प्रथम सूत्र के अर्थ की प्ररूपणा करने के लिए देशामर्शक रूप से आगे का सूत्र कहते हैं, यानी वो तो जो 4 प्रश्न पूछे थे ना उसी का उत्तर देंगे, परंतु उसमें वो 13 सब समझ लेना गर्भित, और ये 13 के उत्तर उसमें भी गर्भित है। अभी उसका उत्तर दे रहे चौथे सूत्र में, उक्कस्सा वा अनुक्कस्सा वा जहन्ना वा अजहन्ना वा, उक्त ज्ञानावरणीय वेदना उत्कृष्ट भी होती है, अनुत्कृष्ट भी होती है, जघन्य भी होती है, अजघन्य भी होती है। ये किसके होती है क्या होती है वो बाद में बताएंगे स्वामित्व में, अब होती है बस इतना बता दिया। पांचवे नंबर के पृष्ठ पर आते हैं, अब ये क्या क्या होती है बता दिया। अब ये 13 प्रश्न थे ना, 3 नंबर के सूत्र में 4 बातें बताई थी उत्कृष्ट है अनुत्कृष्ट, उसमें से उन्होंने 13 प्रश्न घटित कर दिए थे, तो उसमें से पहले 4 तो उन्होंने बता दिए, उत्कृष्ट भी है अनुत्कृष्ट भी है और जघन्य भी है जघन्य भी है। अब आगे का प्रश्न क्या था, क्या सादि है क्या अनादि है, अब उसको यहाँ बताएंगे। फिर ध्रुव है क्या अध्रुव है, ओज है क्या युग्म है, उसके बाद आगे आगे की बात उन्होंने बता दिया, यहाँ यानी क्या नहीं है उसको बता रहे। ज्ञानावरणीय सामान्य की विवक्षा करने पर ओज पद नहीं है, क्योंकि स्पर्धकों वर्गणाओं और अविभाग प्रतिच्छेदों में कृतयुग्मता ही पाई जाती है। यहाँ क्या कहते हैं देखो, ये विषय क्या है अपना, वेदना ने कर्मों की बात हो रही, कर्मों में जो भाव है उसको हम कैसे गिनते हैं, तो अविभाग प्रतिच्छेदों में गिनते हैं। तो अविभाग प्रतिच्छेदों में गिनते हैं, तो उसके बाद जैसे हमने वेदना द्रव्य विधान में कुछ प्रश्न पूछे थे, वहां तो ये संख्या पूछी गई थी कि ज्ञानावरणी की वो उत्कृष्ट है कि अनुत्कृष्ट है, ऐसा पूछा था। वैसे यहाँ भाव संबंधी बात हो रही है, ये पुस्तक में भाव की चर्चा है। ज्ञानावरण का भाव क्या है कि अज्ञान को उत्पन्न करने की शक्ति, वो उसका भाव है। तो प्रत्येक कर्मों का अपना अपना भाव जुदा है, वो भाव हम किस में नापेंगे, तो अविभाग प्रतिच्छेदों में नापेंगे। तो ऐसे यहाँ पर पूछे गए थे, प्रश्न पूछे गए थे, उसमें तीन अनुयोग द्वार बता रहे, पद मीमांसा ने वो जघन्य उत्कृष्ट अजघन्य अनुत्कृष्ट सादी अनादि ध्रुव अध्रुव, ये सब बातें जो है उसको कहेंगे पद। उस संबंधी मीमांसा ने चर्चा, प्रश्न ये पूछा है ज्ञानावरण के उत्कृष्ट होता है क्या नहीं, अनुत्कृष्ट होता है कि नहीं, वो सारे 13 प्रश्न पूछे, उसके उत्तर में अब जवाब दे रहे कि वो भाव से उत्कृष्ट भी हो सकता है, अनुत्कृष्ट भी हो सकता है, जघन्य भी हो सकता है, जघन्य भी हो सकता है। अब बाकी तो नहीं बताए है, इन्हें होता है बताए, क्या नहीं होता है भी यहाँ बताएंगे। देखो 5 नंबर के पृष्ठ पर, ज्ञानावरणीय सामान्य की विवक्षा करने पर, यानी ज्ञानावरण जनरल, इन जनरल की बात करेंगे, तो ओ जो पद नहीं है, ओ जने विषम संख्या में नहीं है। विषम समझते हैं, समझते हैं, समय यानी इवन नंबर, यानी विषम यानी ऑड नंबर। ओ जो, हाँ गुजराती, हाँ ओ जो पद नहीं है, क्योंकि देखो हम ये जो ज्ञानावरण का अविभाग प्रतिच्छेद वगैरह जो है कैसा नापेंगे, अनुभाग नापने की क्या शक्ति होती है, अविभाग प्रतिच्छेदों में नापते हैं, तो एक एक कर्म में अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं विशिष्ट संख्या में, और फिर उसमें समान अविभाग वालों के उसको वर्गणा कहेंगे, नंबर ऑफ परमाणु, और फिर वर्गणाओं के स्पर्धक होते हैं, और एक एक जो कुछ उनके जो स्थान है उसमें अनंत स्पर्धक होते हैं। यही कह रहे अभी, क्योंकि स्पर्धकों यानी नंबर ऑफ स्पर्धक, वर्गणाओं यानी नंबर ऑफ वर्गणाओं में और अविभाग प्रतिच्छेदों में कृत युग्मता ही पाई जाती है, इसलिए ओज पद नहीं है ऐसा कहा। यानी क्या नहीं है बता दिया, कृत युग्म वो तो सम, हाँ कृत युग्म का अर्थ होता है, युग्म भी दो प्रकार के होते हैं, एक बादर युग्म और एक कृत युग्म, जीरो होते हुए, हाँ यानी 4 से भाग जाता है वो कृत युग्म। तो कहते बीच वाले पद बताते ही उन्होंने, कौन से सादी अनादि ध्रुव अध्रुव, डायरेक्ट ओज की बात बताई, तो यहाँ प्रश्न पूछते हैं नहीं वो है ये सिद्ध हुआ। तो कहते अनादि पद की संभावना कैसे है, यानी ज्ञानावरण में अनादि पद कैसे हो सकता है, नहीं क्योंकि ज्ञानावरणीय भाव सामान्य की विवक्षा होने पर उसके अनादि होने में कोई विरोध नहीं है। हाँ हम आप अगर कोई पर्टिकुलर जघन्य की बात कर रहे हैं वो तो अनादि का नहीं होगा, परंतु ज्ञानावरणीय का भाव क्या है, वो तो अज्ञान हो तो अनादि से चल रहा है, अज्ञान उत्पन्न करने की शक्ति जो है उस, यानी बस उसका सामान्य से भाव लेना है वो तो अनादि से है, इसलिए उसको अनादि कह सकते हैं। सादी पद का भी यहाँ अभाव नहीं है, यानी वो सादी पद भी है, सादी कैसे कह सकते हैं हम, विशेष की विवक्षा करने पर, विशेष है ना, अगर हम कहेंगे अनुत्कृष्ट सादी हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो हो सकता है, क्योंकि जब कभी उत्कृष्ट हो जाने के बाद जब अनुत्कृष्ट होगा तो उसको सादी कहेंगे, समझ में आते ना, तो उनमें वो सादी पद भी विशेष, इसी पद की अपेक्षा सादीपना भी संभव है, ये बात कह रहे हैं। ध्रुव पद का भी अभाव नहीं है, क्योंकि सामान्य की मुख्यता होने पर वह भी पाया जाता है, क्योंकि सामान्य से उसका तो हमेशा ही बने रहे, ज्ञानावरण में भाव है ही है। अध्रुव पद का भी अभाव नहीं है, क्योंकि अनुभाग विशेष की अथवा विशिष्ट एक जीव की विवक्षा करने पर अध्रुवपना देखा जाता है। एक तो सामान्य से सभी जीवों की अपेक्षा तो ज्ञानावरण हमेशा ही रहेगा, तो उसको ध्रुव कहा, और एक जीव की अपेक्षा बात करनी है तो वो तो ध्रुवपद नहीं होगा, वो तो उसका अभाव करके मोक्ष चला जाएगा, ऐसा भी ले सकते हैं। या कोई पद विशिष्ट पद है उसकी अपेक्षा वो अध्रुव कहेंगे, क्योंकि उत्कृष्ट उत्कृष्ट कायम नहीं रह सकता, या अनुत्कृष्ट भी है कभी उत्कृष्ट भी हो सकता है, तो वो ध्रुव नहीं है, अध्रुव है, ये भी बात सिद्ध हो जाती है। विशिष्ट एक जीव की अपेक्षा अध्रुव पद, अध्रुव है ने वो तो हम अन्य भी देखते हैं ना, तो ओम विशिष्ट नो 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 ओम नो विशिष्ट वगैरह जो है वो भी हो जाएगी, क्योंकि किसी एक विशिष्ट अनुभाग की अपेक्षा वो बात कह सकते हैं। इस कारण प्रथम सूत्र 12 भंग स्वरूप है ऐसा समझना चाहिए। उसमें 12 भंग हो जाते हैं, कौन से 12 क्या नहीं लिया ओज को छोड़कर बाकी 12 भंग हो गए। ये पहला सूत्र हुआ, ऐसे बहुत सारे सूत्र बनाएंगे। पहले ये 13 प्रश्न पूछना, ये पहला नंबर का सूत्र हुआ, ऐसे और 13 सूत्र बनाएंगे और उसमें 12 प्रश्न पूछने वाले हैं। अभी ये जो पहला ये 13 पद के बारे में पूछा, कौन सा है कौन सा नहीं है, तो सभी है, क्या नहीं है ओज वाला नहीं है, ये पहला सूत्र हुआ। तो 13 में से एक नहीं है तो उसके 12 भंग हुए। अब द्वितीय पृच्छा सूत्र का अर्थ कहा जाता है,
यहाँ पे ओज नहीं है तो हमेशा विभाग प्रतिच्छेद विषम संख्या में नहीं होगा, वो युग्मता।
हाँ हाँ हाँ, कृत युग्मता ही पाई जाती है।
स्वविभाग प्रतिच्छेद की अपेक्षा है,
हाँ, सामान्य की विवक्षा करने पर, विशिष्ट विशेष की विवक्षा करने पर होगा। अभी पता नहीं है कि इस तरह से उन्होंने, क्योंकि वर्गणा में तो एक एक अविभाग प्रतिच्छेद से बढ़ते हुए वर्गणाओं के समूह को ले दिया।
विषम भी होगा
ऐसा? नहीं नहीं नहीं, अभी ओज पद नहीं होता है तो स्पर्धकों की संख्या कहो, वर्गणाओं की संख्या कहो, उसमें तो हाँ वो सो अपेक्षा की बात है। यह हो सकता है कि जो किसी जघन्य अनुभाग की अपेक्षा वगैरह वगैरह वो कृत युग्मता बताई जाएंगे, बताएंगे अभी आगे उसको ही को बताएंगे। तो ये एक नंबर का सूत्र हो, इसको हमने रोमन एक आंकड़ा डाला था, चार सूत्र के अर्थ जहां शुरू हुआ था पांचवें पेज की पहली लाइन में, रोमन एक आंकड़ा, ये पूरा अभी हमें 5 नंबर का शुरुआत से रोमन 1 नंबर। हाँ हाँ, यानी सामान्य की अपेक्षा करने पर ये नहीं है, क्या नहीं है वो बताया, बाकी सब है ये उसमें सिद्ध हो जाता है। अब द्वितीय पृच्छा सूत्र का अर्थ कहा जाता है,
यहाँ रोमन 2 आ जाएगा ना,
यहाँ रोमन 2 द्वितीय सूत्र पृच्छा सूत्र, उसमें क्या लगाएंगे हम उत्कृष्ट पर बाकी सब प्रश्नों को, यानी उसका कॉम्बिनेशन देखेंगे, उत्कृष्ट क्या अनुत्कृष्ट हो सकता है, उत्कृष्ट क्या अजघन्य हो सकता है, क्या जघन्य हो सकता है, वो सब पूछेंगे। तो एक नंबर अभी उसमें डालना, नंबरिंग करो, उत्कृष्ट अनुभाग वेदना कथनचित अजघन्य है। हाँ, क्या क्या है वो बता रहे अभी, क्या नहीं है, उत्कृष्ट है वो, उत्कृष्ट तो होता है पर उत्कृष्ट है वो अनुत्कृष्ट नहीं हो सकता, उत्कृष्ट है वो जघन्य नहीं हो सकता, पर उत्कृष्ट है वो अजघन्य तो कहलाता है ना, क्योंकि अजघन्य पद में वो घ लिखो बराबर ध दिख रहा है, अजघन्य पद में जघन्य से आगे के सभी विकल्प देखे जाते हैं। अजघन्य किसको कहना, जो जघन्य ने वो सारे ही अजघन्य है, तो उत्कृष्ट क्या जघन्य है, नहीं, तो उसको क्या अजघन्य कहेंगे। एक हो गया आंकड़ा, कथनचित सादी है। देखो प्रश्न क्या पूछना है अभी हमको, उत्कृष्ट पद और उसमें क्या क्या लगे, वो क्या अनुत्कृष्ट है तो नहीं, क्या जघन्य है, नहीं, जो है वो बताएंगे, क्या है अजगन्य है, एक बता दिया। अब कहते हैं सादी अनादि में पूछेंगे, कथनचित सादी है, उत्कृष्ट सादी कैसे हो सकता है? अनुत्कृष्ट के बाद होगा वो सादी हो गया क्योंकि अनुत्कृष्ट अनुभाग में स्थित जीव के उत्कृष्ट अनुभाग उत्पन्न होता है, वो नहीं था वो उत्पन्न हुआ तो सादी हुआ। उत्कृष्ट पद के अनादिता नहीं है क्योंकि नाना जीवों की विवक्षा होने पर भी उत्कृष्ट पद का अंतर देखा जाता है। इसका अर्थ क्या है? यानी जो अधिक से अधिक मैक्सिमम अनुभाग, ऐसा नहीं अनादिता देखा जाता है ना, ऐसा हो सकता है कि किसी भी जीव को उत्कृष्ट पद नहीं है तो उसमें भी अनादिपना नहीं संभव। अनुत्कृष्ट तो सबको होगा ना, उत्कृष्ट अनुभाग कभी कभी होगा, अपन ऐसा भी हो सकता है किसी भी जीव को उत्कृष्ट नहीं है, जैसे हमने स्थिति के भेदों में भी देखा था, ऐसा भी हो सकता है कि उत्कृष्ट स्थिति एक भी जीव को न हो, ये भी बन सकती है बात। ऐसे यहां लिया कि उत्कृष्ट पद सभी नाना जीवों की अपेक्षा भी
नहीं हो सकता,
तो उसमें अनादिपना नहीं हो सकता है। यानी हम उत्कृष्ट पद पर ये पूछ रहे क्या वो जगन्य है क्या अजगन्य है, वो सब तो कहते वो अजगन्य है, एक बात हुई वो सादी है ये बात हो गई, परंतु अनादिता उसमें सिद्ध नहीं होती। अब फिर ध्रुव अध्रुव में से पूछेंगे तो कहते कथनचित अध्रुव है, हाँ ये तीन नंबर, यानी उत्कृष्ट पद कथनचित अध्रुव है क्योंकि उत्पन्न हुए उत्कृष्ट पद का नियम से विनाश देखा जाता है, क्योंकि वो उत्कृष्ट उत्कृष्ट कायम उत्कृष्ट नहीं देखेंगे तो वो तो उत्कृष्ट नहीं रहता, तो उसको हम उसको अध्रुव कहेंगे। उत्कृष्ट पद के ध्रुवपना नहीं है क्योंकि नाना जीवों की विवक्षा होने पर भी उत्कृष्ट पद का विनाश देखा जाता है, यानी उत्कृष्ट पद हमेशा नहीं रहेगा। आप कहेंगे किसी की न किसी की तो हमेशा रहेगा नहीं रहेगा, तो कहते नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि उत्कृष्ट पद में एक भी जीव न हो।
असंख्यात लोग काल देखा था वो
असंख्यात लोग हमने स्थिति में देखा था, अभी अनुभाग में जो कुछ यथायोग्य होगा यानी उसका वो अंतर उसमें पड़ेगा, नाना जीवन की अपेक्षा उसमें अंतर पड़ेगा ही, ये कहना चाहते। अभी चार नंबर पर कथनचित युग्म है, अभी युग्म किस अपेक्षा से बता रहे क्योंकि ये उत्कृष्ट के बारे में पूछ रहे ओज है कि युग्म है, तो कहते हैं युग्म है क्योंकि उत्कृष्ट अनुभाग स्वरूप स्पर्धकों वर्गणाओं और अविभाग प्रतिच्छेदों में कृतयुग्म संख्या ही पाई जाती। अभी यह उत्कृष्ट की अपेक्षा कृतयुग्म बात है। और पांच नंबर कथनचित नोम नो विशिष्ट है, यह हमें किस पर लगाना है? उत्कृष्ट पर ही सोचना है क्योंकि एक विकल्प स्वरूप उत्कृष्ट अनुभाग में वृद्धि व हानि का अभाव है। क्या कहना चाहते हैं? जब हम उत्कृष्ट कहेंगे तो मैक्सिमम को ही उत्कृष्ट कहेंगे, अनुत्कृष्ट के भेद हो सकते हैं, अनुत्कृष्ट में अनेक भेद हो सकते हैं, हाँ उत्कृष्ट का एक ही है, तो उसमें कहते हैं कि वो नोम नो विशिष्ट है, उसमें वृद्धि हानि नहीं होती। इस प्रकार उत्कृष्ट पद पांच विकल्प स्वरूप है, यानी उत्कृष्ट पर अन्य 12 को कॉम्बिनेशन लिया तो उसमें पांच स्वरूप ही है। ये रोमन दूसरा हुआ, अभी तीसरा रोमन तीसरा अंक डालना।
यहाँ पर जो नोम नो विशिष्ट जो बताया उसको कथनचित क्यों बताया?
ना ना, इसलिए वो सबके लिए कथनचित शब्द लिया है
क्योंकि वो तो 100% नो आगम नो विशिष्ट होगा। नो
ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि उत्कृष्ट पद क्या क्या है, तो पहले से ही हर एक को कथनचित शब्द लगाया। देखो उत्कृष्ट अनुभाग वेदना कथनचित अजगन्य है,
नहीं ठीक है लगाया हाँ। तो ठीक है, लेकिन हम तो कह रहे हैं कि नो नो ओम नो विशिष्ट तो हमेशा ही रहेगा क्योंकि वो उत्कृष्ट है, उसमें हानि वृद्धि होने का ही सवाल नहीं है, तो कथनचित नहीं लगना चाहिए था ना, ऐसा मेरा
नहीं, नहीं नहीं नहीं, देखो देखो
यह
नहीं हो सकता ऐसा नहीं है। अभी कथनचित शादी है कहा, क्योंकि नाना जीवन की अपेक्षा भी उसके अनादिता नहीं है, यानी वो सर्वथा शादी है फिर भी कथनचित शादी है, कह दिया ना। ये कथनचित शब्द हर एक को लिए लगाया उन्होंने,
वहां पे तो उत्कृष्ट में तो शादी हो सकता है, पर यहाँ पे कथनचित कैसे होगा? वो
हो सकता है पर अनादि भी हो सकता है, ऐसा तो नहीं है ना।
नहीं नहीं अनादि नहीं, यह तो नोम नो विशेष की बात है ना, तो ये तो एक नियम से निश्चय से ही,
वहाँ पर भी नियम से शादी है।
नहीं उत्कृष्ट की अपेक्षा वो शादी हो सकता है, पर यहाँ पे उत्कृष्ट,
अरे पर उत्कृष्ट की ही बात कर रहे हैं, उत्कृष्ट की ही अपेक्षा लगा रहे हैं। उत्कृष्ट पद पर ही पहले में टोटल जीवों की बात थी, यहाँ पद नक्की कर दिया है और वो पद क्या क्या है वो बता रहे।
नहीं मेरा क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे उत्कृष्ट पद दो नो विशिष्ट है ऐसा बताया, तो वो कथनचित कैसे बताया?
कथनचित ऐसा है कि वो उत्पन्न होते समय वो बढ़कर उत्पन्न हुआ ये कह सकते हैं ना। कथनचित उन्होंने हरेक के लिए कथनचित शब्द लगाया है, भले वो नियम रूप से होता है तो भी कथनचित शब्द लगा रहे हैं उन्होंने। हाँ यहाँ क्यों कह रहे है? क्योंकि उत्कृष्ट कह दिया पर उसमें वो कॉम्बिनेशन के साथ अन्य के साथ लगा रहे हैं, उसकी अपेक्षा से उसको ले लेना है, इसलिए कथनचित वो उत्कृष्ट है वो कथनचित उसको प्रसादी भी कह सकते इस तरह से। परंतु वो है तो वो तो नोम नो विशिष्ट ही है, क्योंकि वो एक ही पद है उसमें दो तीन नहीं है। अब कहते हैं तीसरा सूत्र, अब तृतीय पृच्छा सूत्र का अर्थ कहते हैं 6 नंबर के पेज पर, वह इस प्रकार है। अभी हमारे प्रश्न सारे किस पर लगाएंगे? अनुत्कृष्ट पर। तो क्या अनुत्कृष्ट उत्कृष्ट हो सकती है? तो नहीं हो सकती, अनुत्कृष्ट तो अनुत्कृष्ट है ही है। तो वो क्या है वो बता रहेंगे। हाँ ऐसा है, पहले एक पर लगाए थे, एक पर 12 लगाने थे, 12 लगाने थे, एक एक पर 12 लगाने हैं, उसमें से 5 लगेंगे। उत्कृष्ट उत्कृष्ट है ही, वो तो कहने की जरूरत नहीं, 5 कहो या 6 कहो ऐसा भी आएगा कहीं कहीं। हाँ अब तीसरा पृच्छा सूत्र रोमन 3 नंबर डालो, वह इस प्रकार है। ज्ञानावरणीय की अनुत्कृष्ट वेदना, अभी अनुत्कृष्ट संबंधी बात चल रही है। ये अनुत्कृष्ट कहने से उसका परमाणु की संख्या नहीं लेना है, भाव लेना है। यहाँ पर यहाँ सारी भावों की चर्चा चल रही है। तो ज्ञानावरणीय की अनुत्कृष्ट वेदना कथनचित जघन्य है, क्योंकि वो जघन्य वाला भेद है, वो भी उत्कृष्ट नहीं, उसको भी अनुत्कृष्ट कह सकते हैं। क्योंकि उत्कृष्ट से नीचे के अनुत्कृष्ट संज्ञा वाले सब विकल्पों में जघन्य पद का भी प्रवेश देखा जाता है। ये तो समझ में आ सकती है बात। कहते 1 नंबर हो गया, अब 2 नंबर डालना, कथनचित अजघन्य है, क्योंकि जघन्य से ऊपर के अजघन्य संज्ञा वाले वो स के ऊपर बिंदी लगा लो, समस्त विकल्पों में अनुत्कृष्ट पद का भी प्रवेश देखा जाता है। यानी जो जघन्य ने वो भी सारे ऊपर के अजघन्य वो अनुत्कृष्ट भी हो सकते हैं। अब 3 नंबर, कथनचित थ के ऊपर बिंदी लगा लो, कथनचित सादी है, कौन सा? अनुत्कृष्ट, क्योंकि अनुत्कृष्ट पद विशेष की अपेक्षा उसकी सादिता देखी जाती है। पद विशेष यानी अन्य अनुत्कृष्ट में यह अनुत्कृष्ट हुआ, तो इसलिए उसको सादी भी कह सकते हैं। 4 नंबर, कथनचित अनादि है, क्योंकि अनुत्कृष्ट सामान्य की विवक्षा होने पर सादिता नहीं पाई जाती, सामान्य की अपेक्षा है ना, अनादि से वो अनुत्कृष्ट तो चल रहा है। हमने देखा ना, जैसे उत्कृष्ट अनादि का नहीं हो सकता है, नाना जीवन की अपेक्षा भी अनुत्कृष्ट में तो बन जाएगी, यानी अनुत्कृष्ट ही जनरल विवक्षा करेंगे तो विवक्षा के साथ वो अनादि कहेंगे उसको। 5 नंबर, कथनचित ध्रुव है, क्योंकि अनुत्कृष्ट सामान्य की विवक्षा होने पर विनाश नहीं देखा जाता है, यानी हमेशा वो अनुत्कृष्ट वाले किसी न किसी जीव में तो पाया ही जाएगा, हमेशा ही अनुत्कृष्ट तो हमेशा रहेगा। छह नंबर, कथनचित अध्रुव है, क्योंकि अनुत्कृष्ट पद विशेष की विवक्षा होने पर सब अनुत्कृष्ट पद विशेषों का विनाश देखा जाता है। क्या कहना चाहते हैं? पद विशेष यानी अनुत्कृष्ट के भेद कितने हैं? जो उत्कृष्ट है वो सारे अनुत्कृष्ट के भेद है, कितने हो गए?
भाव की अपेक्षा न अनंत,
अनंत हो गए, परंतु उसके योग यानी वो तो अनुभागों के स्थानों की अपेक्षा संख्यात लोग भी हो सकते, परंतु
अनुभाग की अपेक्षा अनंत में चला जाएगा।
अनंत अनुभाग अनंत में होगा, और उसके अनुभागों के स्थान अगर देखेंगे
संख्यात लोग की हो
जाएगा। फिर भी हम देखते हैं यहाँ पर कुछ भी हो तो क्या कहा उसको? पद विशेष बताया, पद विशेष यानी अनुत्कृष्ट के जितने भेद हो गए तो उसमें पर्टिकुलर भेद तो कायम नहीं रहेगा, वो तो चेंज होता ही रहेगा हमेशा, इसलिए उसको अध्रुव कहा। यानी किसी भी अनुत्कृष्ट पद में कायम नहीं रहेगा नहीं जीव, उसको तो बदलते ही रहेंगे इतने सारे विकल्पों में, उसको अध्रुव कहा। सात नंबर, कथनचित युग्म है, क्योंकि सब अनुत्कृष्ट विशेषों में रहने वाले, विशेष यानी पर्टिकुलर अनुत्कृष्टों में रहने वाले अनुभाग स्पर्धकों वर्गणा और अविभाग प्रतिच्छेदों में कृतयुग्म संख्या पाई जाती है। तो कहते कथनचित ओम है, क्योंकि कांडक घात से अनुत्कृष्ट पद विशेष की हानि देखी जाती है, यानी जो हानि होती है तो कहते कि उसका अनुभाग घटकर कम हो गया तो हानि भी देखी जाती है, यानी एक अनुत्कृष्ट की दूसरा हानि होकर दूसरा अनुत्कृष्ट हो गया तो ओम कहेंगे। कथनचित विशिष्ट है, क्योंकि बंध से अनुभाग की वृद्धि देखी जाती है, बंध से ने सत्ता में कम अनुभाग था और अधिक तीव्र अनुभाग बंधा तो उसमें वृद्धि भी देखी जाती है।
सर कथनचित ओम में खाली कांडक लिया तो वहाँ पे कांडक से ही घात होगा अनुभाग की अपेक्षा,
यानी वो घात हुआ तो कांडक ही कहेंगे ना, उसका एक स्थान से दूसरे स्थान में गया जीव, टोटल अनुभाग में उसके कांडक में घात हुआ ऐसा कहेंगे, क्योंकि अनंत अविभाग प्रतिच्छेद यानी जैसे हमने योग स्थान में केवल एक स्पर्ध का एक वर्गणा नहीं होती, एक योग स्थान से दूसरे योग स्थान में बहुत सारे चेंजेस होते हैं ना, सारे वर्ग वर्गणा सारे सबकी टोटल मिलकर वो स्थान होता है, वैसे यहाँ समझना। वहां पर भी जो युग्म संख्या आई थी ना पूरे टोटल की, टोटल के लेना यानी सारे एक एक परमाणु में वर्गणाओं में सभी वर्गणाओं में सभी स्पर्धकों में जो मिलकर होगा उसकी बात वहां होगी शायद। हाँ देखो ये अभी हमने देखा कथनचित ओम है, कथनचित विशिष्ट है। दस नंबर पर कथनचित नोम नो विशिष्ट है, क्योंकि कहीं पर अनुत्कृष्ट पद विशेष की वृद्धि व हानि नहीं पाई जाती, यानी वो तो कुछ काल के लिए उतना का उतना हो रह सकता है तो उसको हानि वृद्धि से रहित बताएंगे। इस प्रकार अनुत्कृष्ट पद दस भेद रूप है, यानी वो अनुत्कृष्ट क्या क्या है बारह में से, तो कहते दस भेद रूप है उसमें अनुत्कृष्ट है वो उत्कृष्ट नहीं है ऐसा कहा, उसको जघन्य अजघन्य तो कह दिया है। सादी अनादि में से सादी अनादि दोनों लिए, ध्रुव भी अध्रुव भी ले लिए, ओज नहीं लिया है, युग्म बताया है नहीं, हाँ फिर ओम लिया, ओज नहीं लिया पर ओम लिया, विशिष्ट लिया और नोम नो विशिष्ट भी लिया। हाँ उत्कृष्ट नहीं है और ओज नहीं है। हाँ उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट है वो उत्कृष्ट नहीं हो सकता है ना, पर वो जघन्य हो सकता है अजघन्य हो सकता है इस तरह से। अब चतुर्थ पृच्छा सूत्र की प्ररूपना करते हुए इस प्रकार है। हाँ, इसको चार देना है, चार लैटिन का रोमन का चार आंकड़ा। अब चतुर्थ लिखा ना, चतुर्थ पृच्छा सूत्र की प्ररूपना करते हुए इस प्रकार है। पहले हमने उत्कृष्ट पर लगाए, सब अनुत्कृष्ट पर लगाए, अभी जघन्य पर लगाएंगे। जघन्य ज्ञानावरणीय वेदना है। अब वो जघन्य है वो उत्कृष्ट नहीं हो सकती, पर वो अनुत्कृष्ट हो सकती है, इसलिए कथनचित अनुत्कृष्ट है, क्योंकि उत्कृष्ट से नीचे के अनुत्कृष्ट संज्ञा वाले विकल्प में जघन्य पद की भी संभावना है, यानी उसको हम अनुत्कृष्ट कह सकते हैं, उत्कृष्ट नहीं है। अभी एक है क्या अनुत्कृष्ट है, दो नंबर सात पेज पर आते हैं, यानी जघन्य अजघन्य उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट में से वो अनुत्कृष्ट है, यहां बात हो गई। अब दो नंबर, कथनचित सादी है, क्योंकि अजघन्य पद से जघन्य पद की उत्पत्ति देखी जाती है। अनादिता नहीं है, क्योंकि सदा केवल जघन्य पद के साथ रहने वाले जीव नहीं पाए जाते, यानी हमेशा जघन्य पद में रहेंगे ऐसे नहीं होगे कोई जीव, यानी जघन्य पद वाले जीव हमेशा नहीं होगे, जैसे उत्कृष्ट में हमेशा नहीं होते वैसे भी यहाँ लिए। तीन नंबर, कथनचित अध्रुव है।
क्या जघन्य में अंतर छह मास का पड़ेगा,
क्यों
भाव की अपेक्षा?
अभी अंतर विंतर बात अभी मत करो, जघन्य वाले जो हमेशा नहीं पाए जाएंगे बस इतनी बात लेकर। अब कहते कथनचित अध्रुव है, क्योंकि अजघन्य पद से जघन्य पद उत्पन्न होता है। जघन्य पद के ध्रुवता नहीं है, क्योंकि जघन्य पद में ही सदा जीवों का अवस्थान नहीं पाया जाता। जघन्य यानी मिनिमम अनुभाग हमेशा ही रहेगा किसी न किसी जीव में, ऐसा नहीं हो सकता, ये कहना चाहते। चार नंबर, कथनचित युग्म है, क्योंकि अभी जघन्य पद पर लगा रहे हैं ना, जैसे उत्कृष्ट पद भी युग्म कहा था वैसे जघन्य पद भी युग्म है, क्योंकि जघन्य अनुभाग संबंधी स्पर्धकों वर्गणाओं और अविभाग प्रतिच्छेदों की कृतयुग्म संख्याएं पाई जाती है, ओज पद नहीं है। उसमें भी हमने देखा था ना, ओज तो नहीं था उसमें भी। ये हो गया, देखो पांच नंबर, कथनचित नोम नो विशिष्ट है, क्योंकि वृद्धि व हानि के होने पर जघन्यपना नहीं रह सकता, यानी जघन्य जो है वो एक ही पद है, उसमें हिनादिकता वाले भेद नहीं है, बस इतना कहना चाहते। जैसे उत्कृष्ट में भी नहीं हो सकते, इसे जघन्य में भी नहीं हो सकते। इस प्रकार जघन्य पद पांच भेद स्वरूप है, उत्कृष्ट भी पांच वाला था, अभी जघन्य भी पांच वाला है। अब पांचवे सूत्र का अर्थ कहते, पांच नंबर रोमन अंक, वही इस प्रकार है। अब अजघन्य पर पूछेंगे, ज्ञानावरणीय की अजघन्य वेदना कथनचित उत्कृष्ट है, क्योंकि जो जघन्य ने वो सारा ही अजघन्य कहलाएगा, इस उत्कृष्ट भी उसी का एक भेद हो सकता है। और कथनचित अनुत्कृष्ट है, क्योंकि जो जघन्य भी नहीं उत्कृष्ट भी नहीं ऐसा बीच वाला जो अजघन्य वाला भेद है उसको अनुत्कृष्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि उसमें ये दोनों पद पाए जाते हैं। तीन आंकड़ा, कथनचित सादी है, क्योंकि अजघन्य पद विशेष की अपेक्षा सादिता देखी जाती है, अन्य अजघन्य से इस पर्टिकुलर अजघन्य में आया क्योंकि अजगने के बहुत सारे भेद हो गए, इसलिए उसमें सादिता होती है। कथनचित अनादि है क्योंकि अजगन्य पद सामान्य की अपेक्षा आदि का अभाव है, यानी इन जनरल अजगन्य वो तो अनादि से है, ऐसा कहेंगे हम। पांच नंबर, कथनचित ध्रुव है क्योंकि अजगन्य पद सामान्य का तीनों ही कालों में विनाश नहीं होता, यानी हमेशा ही वो अजगन्य पद में जीव हैंगे, रहेंगे ही रहेंगे। ये कथनचित ध्रुव बताए। अब कहते कथनचित अध्रुव है क्योंकि अजगन्य पद विशेष की अपेक्षा उसका विनाश देखा जाता है। क्या कहना चाहते हैं, अजगन्य में इतने सारे भेद है, उसमें हो सकता है किसी पर्टिकुलर अजगन्य की बात हम कर रहे हैं, वो तो हमेशा नहीं रहेगा, उसका कुछ काल के लिए कोई जीव नहीं है भी बन सकता है उसके लिए। इन जनरल अजगन्य तो सब है, परंतु उसमें से पर्टिकुलर अजगन्य का भेद उसमें कोई न हो ये भी बात बन सकती है कुछ काल के लिए। सात नंबर, कथनचित युग्म है क्योंकि अजगन्य अनुभाग के स्पर्धकों वर्गणाओं और अविभाग प्रतिच्छेदों की कृतयुग्म संख्या ही पाई जाती है। यहां भी ओज का निषेध ही कर दिया। कथनचित ओम है क्योंकि हानि के होने पर भी अजगन्यता देखी जाती है, यानी एक अजगन्य से दूसरा अजगन्य वो तो हानि रूप है। कथनचित विशिष्ट है क्योंकि वृद्धि के होने पर भी अजगन्यता देखी जाती है, इसका अर्थ यह है एक अजगन्य पद से वृद्धि होने पर भी अजगन्य ही रहता है, उसको कहेंगे वो विशिष्ट है। दस नंबर, कथनचित नोम नो विशिष्ट है क्योंकि वृद्धि व हानि के बिना अजगन्य अनुभाग का अवस्थान देखा जाता है, भले कायम की बात नहीं होगी परंतु कुछ अजगन्य नोम नो विशिष्ट है। इस प्रकार अजगन्य पद दस भेद स्वरूप है, हमने अनुत्कृष्ट भी दस भेद स्वरूप देखा था और अजगन्य भी उतने ही। अब छठे पृच्छा सूत्र का आश्रय करके अर्थ प्ररूपना करते हैं। अभी इसके बाद क्यों सादी अनादि की बात पूछी गई थी, वो बात अभी सादी पर लगाएंगे। वह इस प्रकार है, ज्ञानावर्णीय की सादी वेदना, वो जिसको सादी कह रहे हैं वो क्या क्या हो सकता है, तो कहते एक नंबर कथनचित उत्कृष्ट है, दो नंबर कथनचित अनुत्कृष्ट है, तीन नंबर कथनचित उत्त बराबर लिखना उत्तरु हो गया, कथनचित जगन्य है व कथनचित अजगन्य है, हाँ चारों आ गए उसमें सादी में तो चारों आ गए। अब जो सादी है वो भी कथनचित अनादि है, देखो देखो सादी पर्टिकुलर की अपेक्षा सादी कहेंगे, परंतु वो अनादि भी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि नाना जीवों की अपेक्षा सादी स्वरूप से भी आदि भाव नहीं पाया जाता। क्या कहा, जो सादी वाली बात बताई ना, वो सादी में उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट अजगन्य अजगन्य होते हैं वो बात बताई। अब वो जो सादी वाली बात है वो अनादि कही, ऊपर क्या लिखा है, नाना जीव पड़ुच्च सर्व कालेषु सादित्य दंशनादो, यानी नाना जीवों की अपेक्षा सर्व काल में वो सादी सादीपना ही पाया जाता है, इसलिए उसको ध्रुव कहा। उसके पहले न सिया अनादिया नाना जीवा वेखा सादित्य नवी आदि भावानुलंबनो, यहाँ क्या कहना चाहते हैं, देखो सादी जो है वो अनादि से कहा, यानी सादीपना अनादि से है ये कह रहे हैं, क्योंकि नाना जीवों की अपेक्षा सादी स्वरूप से भी आदि भाव नहीं पाया जाता, क्योंकि नाना जीवों की अपेक्षा वो अनादि है, इतना ही कहना चाहते हैं। ये सादी वाली बात नाना जीवों की अपेक्षा अब कथनचित ये एक वाक्य डबल हुआ है, कथनचित ध्रुव है क्योंकि नाना जीवों की अपेक्षा सादी स्वरूप से भी आदि भाव नहीं पाया जाता, परंतु वो ऐसा होना चाहिए कथनचित ध्रुव है क्योंकि नाना जीवों की अपेक्षा करके सब काल में उसकी सादिता देखी जाती है। एक ही वाक्य है ना,
हमने ब्रैकेट में करके
हाँ, ये पहला जो अभी हमने वाक्य पढ़ा था ना पांचवे अकड़े में जो दूसरा वाक्य था उसको निकाल देना, पेंसिल से कट करो, क्योंकि ऊपर देखो क्या था प्राकृत में तीसरी लाइन लास्या धुआ मैंने कथनचित ध्रुव है ये बराबर है क्योंकि नाना जीवे पड़ुच्च नाना जीवों की अपेक्षा सौ कालेसु सादित्य दंशनादो सब काल में उसकी सादिता देखी जाती है, यानी सादीपना, हाँ सादीपना जो है वो ध्रुव रूप से देखा जाता है। अब सात नंबर देना, कथनचित अध्रुव है क्योंकि सादिता को प्राप्त अनुभाग का विनाश देखा जाता है, यानी जो अनुभाग वो सादीपने का आया है वही अनुभाग कायम नहीं रहता है, इसलिए उसको अध्रुव भी कह दिया। आठ नंबर, कथनचित युग्म है क्योंकि तीनों ही कालों में अनुभाग के स्पर्धको वर्गणाओं और अविभाग प्रतिच्छेदों में कृत युग्मता ही देखी जाती है। नौ नंबर, कथनचित ओम है क्योंकि हानि के होने पर भी सादिता पाई जाती है। जो सादी वाला जो है वो हानि होते हुए भी सादिता हो सकती है। कथनचित विशिष्ट है क्योंकि वृद्धि के होने पर भी सादिता पाई जाती है। क्या कहना चाहते, कोई जो पद है विशिष्ट, वृद्धि हुई तो पहले नहीं थी, वृद्धि होकर वो पद आया तो वो तो सादी कहेंगे उसको विशिष्ट पद की अपेक्षा से। एक दस हो गए ना, ग्यारह नंबर, कथनचित वह नौम नौ विशिष्ट है क्योंकि वृद्धि व हानि के बिना भी उसका अवस्थान देखा जाता है, यानी सादी हुआ वो वैसा ही रहा। इस प्रकार सादी पद ग्यारह भेद रूप है, सादी में ग्यारह भेद बताए। पहले तेरह जो उन्होंने बातें पूछी थी उसमें ओज पद का उसको तो नहीं बताया था, पहले जो पहले सूत्र में जो देखा था ना, हाँ ओज किसी ओज में है ही नहीं है क्योंकि पहले उसका निषेध किया था, यानी बारह ही होते हैं, ओज पद ही नहीं है, पांच नंबर के पेज पर बताया था ओज पद नहीं है। बाकी क्या क्या है पूछा गया था तेरा प्रश्न में से, तो एक ओज पद ही होता नहीं है। हाँ अभी तो ज्ञानावरण पर लगा रहे, सब में भी ऐसा ही उच्च पद नहीं होगा। अभी हम यही रुकेंगे, ग्यारह भेद हमने देखे थे और छह सूत्र हुए अपने पृच्छा सूत्र। जावाणी के ज्ञान से सूजे लोकालो सोवाणी मस्तकनं सदा देत
ब्रह्मा ओरियंतानं नमः सिद्धानं नमः आर्यानं।